समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, परिक्रमा में आपका स्वागत है। श्रोताओ, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अतिरिक्त खेल के मैदान की गतिविधियां होंगी और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर। साथ ही उन विशिष्ट व्यक्तित्व को भी करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। आज से देशभर में बैसाखी, विशु और बोहाग बिहू सहित कई पारंपरिक फसल पर्व मनाए जा रहे हैं। इस अवसर पर सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और श्रोताओ, आज के अंक में मैं हूं अतहर सईद और मेरे साथी मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
Namaskar and hello, Athar. Athar, you rightly said that today is a very auspicious festival of joy, prosperity and, of course, happiness. It is a time when farmers begin harvesting rabi crops. Therefore, this festival is considered a Thanksgiving festival when people thank the God for the abundance of nature. Not only celebrated in Punjab and northern India, it is also celebrated with different names in different states of our country. We will talk more on this in our Dateline segment, but the day also reminds us of the Amritsar massacre, which still looms large.
Bilkul.
When on this day in 1919, which is immortalized in history as a black day, for it bore the witness to one of the most brutal and defining episodes of British colonial rule, the Jallianwala Bagh massacre. More than a century later, the family members of the victims and survivors of the Jallianwala Bagh massacre still mourn the Black Day and say the magnitude of the tragedy should never be forgotten. The massacre was a seismic incident in India's freedom struggle, with its tremors felt at home and abroad. In protest of the Jallianwala Bagh atrocity, Rabindranath Tagore renounced his knighthood. It reminds us that there will always be forces trying to divide us. But how precious is the moment of unity, and that is why festivals are celebrated to enjoy the spirit of togetherness and a new beginning.
Bilkul.
Beginning with the news headlines, we set the ball rolling for today's parikrama.
लोकसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान से पहले प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए अभियान तेज कर दिया है।
Government warns of action under Essential Commodities Act against those indulging in forward trading of pulses.
सरकार गर्मियों के दौरान बिजली की अधिक मांग को पूरा करने के लिए गैस आधारित बिजली संयंत्रों को चालू करेगी।
Nation remembers the brave martyrs of Jallianwala Bagh massacre. President, Vice President, Prime Minister and leaders across party lines pay homage.
ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के एक शॉपिंग मॉल में एक व्यक्ति ने कई लोगों को गोली और चाकू मारकर घायल किया, छह लोगों के मरने की आशंका।
एंड इन आईपीएल क्रिकेट, पंजाब किंग्स टू टेक ऑन राजस्थान रॉयल्स इन मोहाली दिस इवनिंग। And Athar, as always, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. And today, being a festival, we will talk about harvest festivals of India. In fact, Athar, at heart, India is an agricultural country, with the spring harvest marking a major festival in many parts of the country today. April reminds us of our agrarian roots. Harvest festivals ring in the new year for many communities. This is that time of the year when spring comes in and marks the end of the cold, harsh winters. This is the time for celebration and festivities. This is also the start of the harvest season, and multiple states of the country bask in celebrations. The start of the spring harvest festival also welcomes the new year in many states in India, be it Poila Boishakh in West Bengal or Puthandu in Tamil Nadu or Ugadi in Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana to Baishakhi in Punjab. People bask in festivities and welcome the spring harvest festival with open arms. Special dishes are prepared during this time and relished with their loved ones.
बिल्कुल। तो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, एक गीत सुनना चाहते हैं। बैसाखी पर बहुत खूबसूरत गीत है जो हमारी बात को कहीं न कहीं शब्द भी देगा और संगीत भी देगा, और जो जोश है बैसाखी का वो भी हमारे सुनने वालों तक पहुंचाएगा।
Why not?
मेरे देश में हो, मेरे देश में, मेरे देश में पवन चले गुरुवाई हो मेरे देश में। मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई मेरे देश में हो मेरे देश में।
जो आपने बात कही विविधता में एकता की, तो भारत से बढ़कर इस बात का एग्जाम्पल, इस बात का उदाहरण मिल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर विभिन्नता में ही एकता है। यहाँ पर अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग पोशाकें हैं, अलग अलग परिधान हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग लोक संगीत है। अब पर्व की बात चल रही है, बैसाखी का पर्व, यानी फरवरी के बाद जो मार्च आता, मार्च में जहां जो वृक्ष हैं वो परिधान बदलने में व्यस्त हो जाते हैं, नई नई फसलें आनी शुरू हो जाती हैं, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, बंगाल की आपने बात कही, वहां की बात करें, असम की बात करें, ओडिशा की बात करें, तो नई फसल के आगमन पर उसका भी स्वागत किया जाता है। ये मेरे देश में ही संभव है।
एब्सोल्युटली अथर, इनफैक्ट आई वुड से हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर नॉट जस्ट अबाउट सेलिब्रेटिंग द ripe crops, but also an important astronomical change going on in the solar system.
बिल्कुल ठीक बात कही है।
They are considered to be auspicious periods and hence are marked with celebrations and prayers as well.
आपने देखा सर्दी में कहीं ना कहीं हम दुब के रहते हैं, कहीं ना कहीं मौसम का असर हमारे स्वभाव पर पड़ता है, लेकिन जब बसंत का आगमन होता है तो जहां प्रकृति खिलखिलाने लगती है, ठिलाने लगती है, पुराने पत्ते झड़ने लगते हैं, नए पोंपले जो है अपने अस्तित्व की पहचान कराने के लिए बाहर आने लगती है, पुष्प आपका स्वागत करने के लिए बेताब होते हैं, इस तरह से नई फसल हमारे जीवन में आ जाती है और वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। जैसे बैसाखी की हम बात कर रहे हैं, पंजाब में मनाई जाती है, विशु है, विशुभ है, बोहाग बिहू है, पोइला बोईशाख है जो कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, बैशाखड़ी है और पुतांडु है, यानी देश के अलग अलग भागों में ये तमाम पर्व जो है।
असमीज पीपल सेलिब्रेट रोंगाली बिहू एज द स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल ड्यूरिंग दिस टाइम एंड ऑन द डे ऑफ बोहाग बिहू traditional Ohomia food is made like mongsho, chira and pita. People wear new clothes, seek blessings from elders and enjoy the day singing, feasting and of course dancing the bihu dance. The most associated imagery with Rongali bihu is that of women beautifully decked in the mekhla performing the bihu dance.
सही कहा आपने। और फसल कटाई का जो त्योहार है उसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि यह हर किसी के जीवन में खुशहाली लाए, और बैसाखी का ये पर्व, दूसरे जो पर्व हैं दूसरे, उनके साथ साथ हमारी जो खूबसूरत परंपराएं हैं इनके साथ जीने और एकजुटता की जो भावना है उसको प्रगाढ़ करने का ये हमें अवसर प्रदान करें। अब बहुत खूबसूरत ये मौसम होता है, हम केरल की बात करें तो केरल में त्योहार विशु कहलाता है, और इस दिन अनुजा खास बात यह होती है कि नए कपड़े खरीदे जाते हैं, आतिशबाजी होती है, विशु कानी सजाई जाती है, ये लोक एक सजावट का एक तरीका है, इसमें फूल हैं, फल हैं, अनाज हैं, वस्त्र हैं और सोना चांदी आदि वो सजाए जाते हैं, सुबह सुबह इनके लिए इनके दर्शन भी किए जाते हैं।
In fact, Athar, harvest festivals have significant cultural, social and religious significance. And if we talk about, it is mainly about giving thanks. Harvest festivals are often seen as a time to give thanks for the bountiful harvest and to recognize the hard work and labor that goes into growing crops. It is also about celebrating community. The festival is a time for people to come together as a community to celebrate the end of the growing season. And this can also serve as a social and cultural bonding experience for different communities.
अब यही पर्व की हम बात उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में करें तो उत्तराखंड में बिखोती महोत्सव के नाम से जाना जाता है, और इस अवसर पर पवित्र नदियों में डुबकी लेने की वहां पर परंपरा है, और इस लोकप्रिय प्रथा में प्रतीकात्मक जो राक्षस होते हैं उनको पत्थर मारने की परंपरा है। और विशु की अगर हम बात करें अनुजा, तो विशु बैसाखी के ही दिन यानी आज ही के दिन केरल में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, जो मलयाली महीने में मेदाम के पहले दिन ये पर्व मनाया जाता है। और बोहाग बिहू का हमने जिक्र किया तो ये इसको रंगली बिहू भी कहा जाता है, और आज के दिन और आज ही के दिन इसको असमिया में मनाया जाता है, और नए वर्ष की शुरुआत होती है वहां पर।
एब्सोल्युटली, सो कमेमोरेटिंग द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑल्सो, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स कैन सिंबलाइज द एंड ऑफ द एग्रीकल्चरल साइकिल एंड द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द ईयर, दे कुड ऑल्सो सिंबलाइज द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ।
बिल्कुल,
and it is also a celebration of abundance. Like in times of scarcity or hardship, harvest festivals can be seen as a celebration of abundance and a reminder of the importance of a particular community and sharing resources. So overall, Athar, harvest festivals are deeply rooted in tradition, but also reflect the contemporary values and needs of the people who celebrate them.
सही बात है, और पर्वों की जो भावना होती है एकता भावना है, खुशी का इजहार जो भावना है, और विभिन्नता में एकता की जो भावना है, और साथ में जो एनर्जी मिलती है, ऊर्जा हमें मिलती है इन पर्व से, उन ऊर्जा को हम कहीं ना कहीं संगीत के माध्यम से भी उसको एंजॉय करते हैं। तो क्यों ना हम भी चलते चलते संगीत का आनंद लें।
थोड़ी सी धूल मेरी धरती की, मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की, मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई दे मस्त पवन की, थोड़ी सी धोखनी वाली।
Surely our traditions and customs, though it may seem archaic to the newer generations, have a significance, and it is as deep-rooted as the origins of our society. Clearly, India's agrarian society traditions are still followed, albeit with a dash of modernity, and this isn't changing anytime soon. President Draupadi Murmu, Vice President Jagdeep Dhankar and Prime Minister Narendra Modi has also extended their wishes to all the people. In a social media post, Mr. Modi has wished that the vibrant festival closely associated with harvest may bring prosperity and happiness in everyone's lives.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं की ओर जाने का और उनसे ये जानने का कि उनके पास क्या कुछ विशेष है। और इस कड़ी में पहले हम कहाँ चल रहे हैं अनुजा?
वी आर टेकिंग यू ऑल टू संबलपुर इन उड़ीसा। In fact, a third in India, the inspection and operation of underwater infrastructure, including dams, bridges and port structures, continue to be challenging without effective technological solutions. The National Institute of Technology, Rourkela, the students from there are trying to bridge this technology gap by innovating affordable solutions in the underwater robotics domain. We have more on this from our Sambalpur correspondent.
A team of 14 students of the National Institute of Technology, NIT Rourkela, have developed two submersible robots to facilitate the survey of dams and bridges. While balancing regular studies, the students took out time for this project, which took them around 2 years to complete and cost over rupees 1 lakh. They have named the robot as Jaladuto and Jalsima. These two robots are remotely operated vehicle. While Jaladuto can go as deep as 150 meters, Jalsima has the capacity of going 500 to 600 meters deep into the water. Weak dams and the bridges often result in mishap. These two robots can prevent such mishap as they are able to inspect the condition of dams and bridges within minutes. So far, the students have won several awards and accolades for their project. The team also had an opportunity to showcase their robots to Defence Minister Rajnath Singh. Anubhav Sahu, a NIT student and member of the project team, said, "Earlier human beings would go deep into the water to study the condition of structures like dam and bridges and their longevity. While they can go down 30 meters, our robots can go deep into the water, easily inspect the condition of bridges, send live footage and data." Similarly, Prasad Patra, another student involved in the project, said, "India is a developing country and engineers like us can save the future of India by contributing new technologies." For Parikrama, Alok Chandra Barik, Akashvani, Sambalpur.
And now, Athar, where are you taking us all to?
बिल्कुल, हम बताते हैं कि विभिन्न इलाकों से जो सूचनाएं होती हैं, समाचार होती हैं, अपने सुनने वालों तक पहुंचाते हैं अपने संवाददाताओं के माध्यम से। और इस कड़ी में हम अब चलेंगे रायपुर यानी छत्तीसगढ़। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही महिला स्व सहायता समूह और शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से अनेक अनूठे प्रयोग कर रहे हैं। इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे रायपुर संवाददाता।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बीते बुधवार को बाइक रैली निकाली गई। इस बाइक रैली में राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहिब कंगाले और जिले के कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह भी शामिल हुए। रैली में बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। यह रैली रायपुर के विभिन्न स्थानों से होकर गुजरी। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने मतदाता जागरूकता के लिए बनाए हेलमेट स्टीकर का विमोचन किया और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ी बोली में बनाए गए गीत "चल संगी मतदान कराबे" का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर स्वीप एक्सप्रेस को रवाना किया गया। इस स्वीप एक्सप्रेस के माध्यम से लोक कलाकार विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोक गीतों और नुक्कड़ नाटक का मंचन कर लोगों को मतदान के लिए जागरूक करेंगे। इसी तरह रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकास खंड में ग्राम पहाड़ लुड़ेग में स्थित केलो नदी के उद्गम स्थल पर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और ग्रामीण जुटे और उन्होंने लोकसभा चुनाव में मतदान करने का संकल्प लिया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के ग्राम देवरी में शिवनाथ नदी के तट पर स्थित मोक्ष धाम सांकर देहरा में दीपदान कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने दीप जलाकर मतदान करने की शपथ ली। इसी तरह राज्य के माओवाद प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में स्वच्छता दीदियों ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कबाड़ की बोतलों, डिब्बों और अन्य सामग्री का उपयोग करते हुए रंग बिरंगी आकर्षक कलाकृतियां बनाकर मतदान का संदेश दिया। इस मौके पर स्वच्छता दीदियों ने स्वयं भी मतदान करने की शपथ ली। इसके अलावा राज्य के विभिन्न स्थानों में मानव श्रृंखला, मैराथन दौड़, रैली, हस्ताक्षर अभियान के साथ ही रंगोली, मेहंदी और चित्रकला जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
And now with the general elections round the corner, in the parliamentary elections to Puducherry constituency, there are two unique aspects. One is women in election and the second is green election. There are 10,23,000 electorates in the Union Territory as on 27th of March. Female electorates outnumbered the male electorates in the electoral roll. We have a report on this. Let's listen to it.
The total female voters are 5,42,000. The total male voters are 4,80,000. If we take the figures for assembly segments, female electorates outnumbered male electorates in all 30 assembly constituencies. Among the 26 candidates in fray, 3 candidates are women. One all-woman model polling stations in each 30 assembly segments would be established. These polling stations will be handled by women personnel. In Mahe region, all the 31 polling stations will be handled by women polling staff members. In this region, all postal ballot votes were collected by women personnel. The office of Chief Electoral Officer has launched the Count the Carbon campaign. As an outreach program, this campaign involves with the scientific assessment of election processes in a holistic manner. This initiative is intended as a first step towards a carbon neutral elections in the near future. Chief Electoral Officer and District Election Officer are encouraging the youths to vote with friends and family members. They appealed them to walk to vote and opt for vehicle polling. A logo designed exclusively for walk to vote is made popular among the voters. Chief Electoral Officer Sri P. Jawahar has given a simple calculation. Riding a two-wheeler for 1 kilometer emits 43 grams carbon dioxide equivalent, while a car emits 180 grams. If all 10,23,000 voters in the Union Territory walked to vote, 40 tons to 180 tons of carbon dioxide equivalent emission would be saved. One model polling booth based on sustainable themes would be established in all 30 assembly segments. These booths will be decorated with plantain leaf, thatched sheds, toranams made of vegetables and multi-grain rangolis. With all these efforts, the election department believes and expects the election 2024 would be sustainable and green election in Puducherry Union Territory. This is Sivakumar, Deputy Director News, Akashwani, Puducherry.
And of course, in view of the upcoming Lok Sabha elections, we present to you a capsule based on the state profiles of different states, giving details of the number of phases, date of polling, number of seats and other relevant facts by our correspondents. And in this segment, first let's go to Coimbatore parliamentary seat of Tamil Nadu. Tamil Nadu will vote for the Lok Sabha elections in a single phase on the 19th of this month. The Coimbatore Lok Sabha seat has 6 assembly segments: Palladam, Sullur, Kavundarapalayam, Coimbatore North, Coimbatore South and Singanallur. We have more in this report from our correspondent.
In the 2021 assembly elections, 5 constituencies went to AIADMK and 1 went to BJP, where actor politician Kamala Hassan lost it to BJP's Vanathi Srinivasan in a narrow difference of 1728 votes. Coimbatore Lok Sabha constituency has a 3-cornered contest in which Singappi Ramachandran of AIADMK, former mayor presently in DMK, P. Ganapati Rajkumar and state BJP president K. Annamalai are contesting. The total electorate in Coimbatore is 30,81,594 voters. The race for the chair in Lok Sabha has become fierce, with the campaigning reaching feverish pitch, with almost the VVIPs of all parties garnering votes for their candidates. Joy, Akashwani, Chennai.
उत्तराखंड में लोकसभा की सभी 5 सीटों पर मतदान पहले ही चरण में होगा. इन चुनावों में 83,37,914 मतदाता 55 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे. नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर 10 उम्मीदवार मैदान में. इस पर सुनते हैं ये रिपोर्ट.
लोकसभा चुनाव में नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से इस बार 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. भाजपा से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, कांग्रेस के प्रकाश जोशी, बसपा के अख्तर अली और उत्तराखंड क्रांति दल के शिव सिंह सहित 10 प्रत्याशियों ने चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की है. इस सीट पर 2 उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. 14 विधानसभा क्षेत्रों से बनी इस लोकसभा सीट पर इस साल 20,15,809 मतदाता चुनाव में उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे. सुगम मतदान के लिए इस संसदीय क्षेत्र में 2,328 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. वर्ष 2019 में हुए सामान्य चुनाव में गढ़वाल की इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया. भाजपा के अजय भट्ट ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के हरीश रावत को 3,39,096 मतों से हराया था. साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून.
And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
On the 13th of April 1919, one of the most brutal episodes of Indian freedom struggle, the Jallianwala Bagh massacre, took place. The incident marked a turning point in India's struggle for independence.
The Rowlatt Act was passed on 10th of March 1919, authorizing the government to imprison or confine, without a trial, any person associated with nationalistic activities. This led to nationwide unrest. This act was termed as Black Act by nationalist leaders. Mahatma Gandhi initiated Satyagraha to protest against the Rowlatt Act and published an article called Satyagrahi on 7th of April 1919. Describing ways to oppose the Rowlatt Act.
The British government issued orders to prohibit Gandhiji from entering Punjab and to arrest him if he disobeyed the orders. Dr. Saifuddin Kichlu and Dr. Satyapal, the two prominent leaders who were a symbol of Hindu-Muslim unity, organized a peaceful protest against the Rowlatt Act in Amritsar. When the two leaders were arrested on April the 9th, 1919, the people marched to the deputy commissioner's residence the next day to demand their release. They were fired upon by the police and many people were injured. The Lieutenant Governor of Punjab, Michael O'Dwyer, directed the officers to suppress all opposition.
13th of April 1919, on the day of Baisakhi, people had gathered at Jallianwala Bagh to celebrate Baisakhi, in spite of the orders prohibiting any assembly. At the meeting, 2 resolutions were to be discussed, one condemning the firing on April the 10th and the other requesting the authorities to release their leaders.
And that is why a Mahatma begs us to take the course of non-violence.
When the news reached the police, the tyrant Brigadier General Reginald Dyer headed to the Bagh with his troops. He entered the Bagh, deployed his troops and ordered them to open fire without giving any warning.
Should we issue a warning, sir?
They've had their warning. No meetings.
People rushed to the exits, but Dyer directed his soldiers to fire at the exit. The indiscriminate firing continued for 10 to 15 minutes and it ceased only after the ammunition had run out. Over 1,650 rounds were fired.
The total estimated figure of the dead as given by General Dyer was 291. However, other reports, including that of a committee headed by Madan Mohan Malviya, put the figure of dead at over 500.
As the news of the massacre spread across the nation, Gurudev Rabindranath Tagore renounced his knighthood.
और अब चलते हैं खेल के मैदान और जानते हैं वहां की हलचल। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। कल लखनऊ में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। 168 रन के लक्ष्य को दिल्ली कैपिटल्स ने 11 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 3 विकेट लेने वाले कुलदीप यादव प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किए गए। और अब समय है उन हस्तियों को याद करने का जिनका आज है जन्मदिन या जन्मदिवस, या जिन्होंने आज इस दुनिया को, आज के दिन इस दुनिया को कहा अलविदा। और इस कड़ी में सबसे पहले हम याद करेंगे बेहद लोकप्रिय अभिनेता बल्लाल साहनी को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। बल्लाल साहनी ख्याति प्राप्त लेखक भीष्म साहनी के बड़े भाई और चरित्र अभिनेता परीक्षित साहनी के पिता थे। वे रंगमंच और सिनेमा में अप्रतिम प्रतिभा के मालिक थे। बल्लाल साहनी को एक ऐसे अभिनेता के रूप में जाना जाता है जिन्होंने रंगमंच और फिल्म दोनों ही माध्यमों में सफलता हासिल की। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों को पर्दे के पात्र से भावनात्मक रूप से जोड़ देते थे। अनुज, एक फिल्म आपको याद होगी काबुलीवाला, क्या गजब का अभिनय था उसमें। और उसी गीत से एक गीत का मुखड़ा मैंने चुनकर निकाला है अपने सुनने वालों के लिए, पहले वो सुन लेते हैं।
मेरे प्यारे वतन है, मेरे बिछड़े चमन, तुझको दिल को दुबार, तू ही मेरी
Sathar. In Kabliwala in the year 1961, he literally touches the core of the soul of a viewer, depicting the true plight of the Kabuli people. His story is of a Pathan peddler from Kabul, Afghanistan. Dialogue from Kabliwala is with human touch, which is unsurpassed in Bollywood.
बिल्कुल, एक फिल्म और आपको याद होगी दो बीघा जमीन, क्या गजब की फिल्म थी। और इसके अलावा धरती के लाल, हम लोग, गर्म हवा, सीमा, वक्त, कठपुतली, लाजवंती, सोने की चिड़िया, घर संसार, भाभी की चूड़ियां, हकीकत, दो रास्ते, एक पुल, दो माली, यानी जितनी फिल्में हैं लाजवाब हैं, कमाल की हैं।
Right, and today is also the death anniversary of Babu Gulab Rai, who was a significant figure in modern Hindi literature. Gulab Rai completed his MA in philosophy from Agra, and later he started writing philosophical essays in English and switched to Hindi in order to promote it as a national language. His first two works, Shanti Dharm and Maitri Dharm, reflected his ideology and interests. He was conferred with an honorary doctorate from Agra University in the year 1957 by the then Vice President of India, V.V. Giri.
और अब बात जन्मदिवस की, तो आज केपी सक्सेना का जन्मदिवस है। उनका पूरा नाम कलिका प्रसाद सक्सेना है। वे जाने माने व्यंग्यकार और लेखक थे। स्वदेश, लगान, हलचल और जोधा अकबर जैसी फिल्मों की पटकथा और संवाद लिखने का कार्य भी उन्होंने किया। 2000 में केपी सक्सेना को पद्मश्री और 2008 में राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान से सम्मानित किया गया।
Right, and with the wedding season starting in India, we hear the famous wedding anthem, Aaj Mere Yaar Ki Shaadi Hai, from the 1977 film Aadmi Sadak Ka, blasting on the speakers.
और आप जानना चाहती हैं इसके गीतकार कौन हैं?
जी बताइए।
मैं बता सकता हूँ, वर्मा मलिक साहब।
जी हाँ, and he is the lyricist and he has written many other beautiful songs, and those songs were very popular as well.
दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, लगता है
मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम।
तो गीत और इससे पहले का जो गीत था वो तो उसके बिना तो शादियां ही अधूरी रहती हैं। अब बस चलते चलते अनुजा याद कर लेते हैं सतीश कौशिक जी को, जिनका भी आज जन्मदिवस है। चूंकि समय अब और अनुमति नहीं दे रहा है, तो श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो अनुमति दीजिए अतहर सईद और अनुजा कुमार को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार,
नमस्कार।